ದರ್ಶನ್ ಸ್ವಯಂ ಕದರ್ಶನ್ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಜಗಾಲೆ ಬುಝೀ ಹುಯಿ ಜಗಾಕರ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಫಿರ್ ಪಾಲೆ.
ಓಂ ಶಾಂತಿ. आज हम सभी बाबा के मिलन की पूर्व संध्या पर परमादरणीय दादी गुलजार जी से बहुत सुंदर उमंग उत्साह भरा क्लास सुन रहे थे. बहुत सरल शब्दों में कैसे हम बाबा को अपना बनाएं और सर्व अधिकार बाबा से ले लें. सरल भाषा में हम सबको दादी जी ने बहुत सुंदर प्रेरणाएं दी. आज का विशेष जो इस समय विषय रखा गया है, हम सभी ब्रह्मावत्स, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां जिस दिन से बाबा के बच्चे बने हैं, यही पहला पाठ कि आप कौन हो, कैसे आत्मा इन कर्म इंद्रियों की मालिक राजा है और वो स्वराज्य अधिकारी बन करके अपनी कर्म इंद्रियों पर कैसे शासन करे, ये पाठ शुरू से आज तक हम सभी रोज पढ़ रहे हैं. कोई भी दिन ऐसा नहीं है. आज की सवेरे की मुरली में पूरी मुरली ही इसी टॉपिक पर थी कि बच्चे भाषण बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, क्लासेज भी कराते हैं, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट जो देही अभिमानी स्थिति है वो अभी तक कहाँ बनी है. तो बाबा हम सभी का ध्यान जिस श्रेष्ठ स्थिति पर रोज खिंचवा रहे हैं, इसके महत्व को हम आप सभी जानते हैं, क्योंकि आत्मा इस शरीर के साथ बहुत समय रही है, अनेक जन्म उसने इस शरीर के साथ पार्ट प्ले किया है. तो आत्मा का इस शरीर से इतना घनिष्ठ संबंध है, जैसे बाप और दादा इस समय दोनों एक दिखाई देते, पता नहीं चलता कि बाबा बोल रहे हैं या शिव बाबा, ऐसे ही आत्मा और शरीर भी इतना समीप संबंध में आ गए हैं, जो कई बार देह विमान भी पता नहीं चलता कि आत्मा कैसे इसके वशीभूत होकर के कर्म कर रही है. तो हम सभी कैसे इसका चार्ट बनाएं, कैसे इसकी चेकिंग करें और ये पुरुषार्थ इतना सरल हो जाए जो हम चलते फिरते उठते बैठते इसी अभ्यास के माध्यम से प्रभु मिलन का आनंद ले सकें. आप सभी कल बाबा से सन्मुख मिलन मनाएंगे और ये समय ऐसा है, आप सभी लास्ट टुब्बी कहते हैं इसको, लास्ट मिलन इस सीजन का बहुत महत्वपूर्ण दिन पर आए हैं और हरेक के अंदर, दिल के अंदर उमंग आ रहा होगा कि हम बाबा से मिलेंगे, बाबा से वरदान लेंगे, शक्तियां लेंगे और पूरे वर्ष के लिए ऐसा अपने आप को सजा लेंगे, श्रृंगार कर लेंगे जो सभी पूरे वर्ष वो बातें हमें याद रहें. तो उसके लिए हम सभी क्या तैयारी करें, आज बहुत सुंदर विषय पर हम विचार करने जा रहे हैं. क्योंकि बाबा ने कई बार कहा है कि बच्चे भविष्य का दर्पण, विचित्र दर्पण, जिसमें आप बच्चे अपने भविष्य पद को देख सकते हो, वो वर्तमान स्वराज्य स्थिति है. जितना समय हम सभी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं, मैं आत्मा राजा हूँ, मालिक हूँ, और एक एक कर्मेंद्री मेरी कर्मचारी है। अगर सभी ब्राह्मण, सभी बाबा के बच्चे यही अभ्यास रोज एक बार भी कर लेते हैं तो ये कर्मेंद्रियां उनके कंट्रोल में आ जाती हैं। क्योंकि आप सबने बाबा के इतिहास में सुना होगा, ब्रह्मा बाबा को जब शिव बाबा ने चुना, 1936 की बात है, बाबा ने ब्रह्मा बाबा का माध्यम लिया। लेकिन जब बाबा ने लौकिक गुरु किए हुए थे, 1930 से ही बाबा का एक गहरा पुरुषार्थ चल रहा था, और उस गहरे पुरुषार्थ में बाबा ने अपनी एक बहुत अच्छी डायरी बनाई थी, जिस डायरी में बाबा ने अपने हाथों से बहुत सुंदर अनुभव लिखे हैं। अभी वो डायरी मिली तो उसे टाइप किया तो उसमें पता चला कि बाबा ने अपने लौकिक जीवन में कितना पुरुषार्थ करके अपनी कर्म इंद्रियों को अपने कंट्रोल में किया था। बाबा रोज एक राज दरबार लगाते और उस राज दरबार में अपने सभी कर्मचारियों से, सबसे समीप के जो मुख्यमंत्री हैं, उसको बाबा कहते थे, मन तू मेरा वजीर है, बुद्धि तू मुझे क्यों मार्गदर्शन नहीं ठीक देती, ये मन भटकता क्यों है, क्यों गुरु का ध्यान करने नहीं देता। एक एक बात बाबा मन और बुद्धि से, अपनी एक एक कर्म इंद्री से पूछते थे, बात करते थे, और बहुत मेहनत करके मन को कंट्रोल किया। गीता में बार बार अर्जुन एक ही कंप्लेन भगवान के आगे करते हैं कि मन टिकता नहीं है, मन बहुत चंचल है, मन को कैसे वश किया जाए, और भगवान उनको बहुत सहज विधि बताते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन कंट्रोल हो जाएगा। बाबा ने कैसे अभ्यास किया, साकार ने शिव बाबा की प्रवेशता हुई, एक एक कर्म इंद्री को बाबा ने शीतल बना दिया। उसके पहले ये अभ्यास करके आत्मा को पावन बना लिया। भले शिव बाबा कहते मैं पतित शरीर में आता हूँ, लेकिन ब्रह्मा की आत्मा ने जो पुरुषार्थ किया, जो मेहनत की, अपने लौकिक जीवन में ही बाबा ने अपने आप को पावन बना लिया, तब से बाबा ने प्रवेश किया। और उस शरीर में प्रवेश करके जो प्रवेश होते ही साक्षात्कार की लीला चली, आप सभी ने इतिहास सुना होगा कैसे जो बाबा को देखता या बाबा की दृष्टि जिस बच्चे पर पड़ती, उसे सतयुग का, श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता, और वो बाबा को बहुत छोटे श्री कृष्ण के रूप में देखता और बाबा की गोद में आ जाता या बाबा को पकड़ लेता। लोग तो समझते थे कोई जादू है, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन बाबा की एक पावन दृष्टि और शिव बाबा की प्रवेशता, इन दोनों की कमाल थी, जो बाबा के द्वारा अनेक बच्चों को भिन्न भिन्न अनुभव हुए, साक्षात्कार हुए और स्थापना का कार्य संपन्न हुआ। लेकिन अब अंत समय में जब आत्माओं को वापस चलना है, हम सभी को अभी बहुत स्पष्ट एक दर्शन हो रहा है, एक स्पष्ट साक्षात्कार हो रहा है कि अब वो घड़ियां बहुत समीप आ गई हैं जब आत्मा इस चोले को छोड़ करके अपने बाबा के पास जाएगी, वतन में उड़ करके जाएगी, घर चलने का अभी समय आ गया है। इसलिए जिस स्वरूप में आत्मा संपूर्ण पावन उतरी थी, अधिकारी स्वरूप में उतरी थी, स्वराज्य था, कोई भी कर्मिंद्री की गुलाम नहीं थी, राजा थी, अभी संगम युग की अंतिम घड़ियों में बाबा हम सभी बच्चों को उस पवित्र स्वरूप में देखना चाहते हैं, स्वराज्य अधिकारी स्वरूप में देखना चाहते हैं, और जितना आत्मा अपने इस आसन पर विराजमान रहेगी, अभी भी आप सभी क्लास सुन रहे हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आत्मा राजा है, इस भ्रकुटी आसन पर बैठी है। इस अभ्यास के साथ साथ सुनते जाएं, बहुत सुंदर अनुभव होंगे इस देह से डिटैच होने के, क्योंकि बाबा से मिलन की अनुभूति के लिए, बाबा की करंट लेने के लिए, बाबा की शक्तियों को कैच करने के लिए इस देह रूपी रबड़ को उतारना ही पड़ेगा, इस भान को भूलना ही पड़ेगा। और उसकी बहुत सहज सरल विधि बाबा ने हम सबको सुनाई कि आप आत्मा, इन सब कर्मेंद्रियों की मालिक, इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हो, तख्त पर बैठ करके अपनी कर्मेंद्रियों को अपने आर्डर से चलाओ, मन को अपने कंट्रोल में रखो, क्योंकि मन आपके लिए एक बहुत सुंदर वाहन है, और इसी मन के वाहन से आप मूल वतन, सूक्ष्म वतन की यात्रा भी कर सकते हो। इसी वाहन के द्वारा आप कहीं भी दूर बैठी हुई आत्माओं से मिलन मना सकते हो, उन्हें अनुभूति करा सकते हो, उन्हें प्रेरणा और ज्ञान दे सकते हो, मदद कर सकते हो। बाबा ने इस सीजन में हम सबका इस बात पर विशेष ध्यान खिंचवाया है कि मन की अभी सेवाएं प्रारंभ करो, लाइट हाउस बन करके आत्माओं को लाइट दो, सकाश दो, दुखियों की पुकार सुनो, कितनी आत्माएं परेशान हैं, दुखी हैं, अशांत हैं। लेकिन यदि मन मेरा ही चंचल है, मेरे ही कंट्रोल में नहीं है, तो इस मन के द्वारा हम क्या सेवाएं कर सकेंगे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति में स्थित हो करके हम कुछ बातें अपने आप से पूछें कि अभी तक बाबा के बच्चे हम बने और यहाँ पर जो भी विराजमान है, कोई 6 महीने से, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, भले पहली बार बाबा से मिलने आए हैं, लेकिन बाबा के 1-2 साल पुराने ही बच्चे हैं, रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, रोज अभ्यास भी करते हैं, योग भी लगाते हैं, लेकिन जिस स्वरूप में बाबा हम सबसे चाहता है कि मेरे बच्चों का योग पावरफुल हो जाए, 1 सेकंड में अपने मन और बुद्धि को कंट्रोल कर लें, आप देखना ये मन 1 सेकंड में आपको परमधाम की ओर ले जाता है कि मन हमारा कहाँ तक सुमन बना है, कैसे कहना हमारा मानता है, क्योंकि चार्ट की चेकिंग करनी है। बाबा भी कल चार्ट पूछ सकते हैं, क्योंकि हर मुरली में चार्ट बता रहे हैं, कुछ न कुछ बाबा की चेकिंग की बातें हर मुरली में आ रही हैं। 3 महीने से लगातार हम सभी बाबा की मुरलियों में भिन्न भिन्न होमवर्क सुन रहे हैं, और उसमें विशेष बात पर ध्यान बाबा ने खिंचवाया है कि मन की लगाम कहाँ तक हाथ में है। श्रीमत की लगाम के आधार से मन को कंट्रोल किया है, अथवा ये कहें कि मन हमारा इतना सुमन बना है, इतने अच्छे अच्छे सकारात्मक चिंतन, अच्छे विचार करता है, जो जब चाहे वो बाबा के पास मूल वतन अथवा सूक्ष्म वतन में पहुंच जाए, मेहनत न करनी पड़े, सेकंड से भी कम समय में हम बाबा के पास पहुंच जाएं, संकल्प करें और बाबा के साथ मिलन हो जाए। इतना सुलझा हुआ मन है, चेकिंग ये है, कहीं उलझा हुआ तो नहीं है, कई बातों में, कई संस्कारों में, कई स्वभावों में। अगर मन उलझा हुआ है, कहीं फंसा हुआ है, कोई आकर्षण है, कोई लगाव है, कहीं झुकाव है, किसी का प्रभाव है या किसी का दबाव है। हम सभी देखें मन कैसा है, कहां कहां पर जाता है, क्यों जाता है। अगर आत्मा को कोई चीजें, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु प्रभावित करती है तो बार बार मन उसकी तरफ भागता है। अगर कहीं बंधन बंधे हुए हैं, कोई भी हिसाब किताब की रस्सियां हैं, उधर भागता है, जाता है। कोई से कुछ लेन देन है, कर्ज है, हिसाब किताब रहा हुआ है, उधर भागता है, बार बार जाता। बैठते योग लगाने और जब योग में बैठते हैं तो सब बातें याद आती हैं, उधर ही जाता है। इसके लिए बहुत सूक्ष्म चेकिंग और चार्ट की आवश्यकता है। तीव्र पुरुषार्थी बाबा के बच्चे हमेशा अपने आप को इस बात में ध्यान देते हैं, अटेंशन रखते हैं कि जिस समय जिस कार्य के लिए हम बैठते हैं, कम से कम उस समय तो वो कार्य किया जाए। योग के समय दूसरे विचार क्यों, पढ़ाई के समय बुद्धि बाहर क्यों। अगर हम यही एक सूक्ष्म चेकिंग कर लें कि ये कार्य इसमें ही मन और बुद्धि एकाग्रचित होकर के लग जाए तो कार्य की सिद्धियां भी मिल जाएंगी और जो हम चाहते हैं वो सब प्राप्तियां भी हो जाएंगी। तो हम सभी अपने मन और बुद्धि का पहले चार्ट बना करके चेक करें, कहां कहां पर वो जाता है, कितना सुमन है, कितना सुलझा हुआ है, कितने शुद्ध और अच्छे विचारों में रमण करता है। अगर अच्छा अच्छा भोजन देते हैं हम अपने संकल्पों को, बुद्धि को, ज्ञान का, बाबा की मुरलियां सुनते हैं, वरदान सुनते हैं, इतने अच्छे अच्छे साहित्य हम सभी ज्ञान के पढ़ते हैं, अगर हम उसी में रमण करना जानते हैं, मनन करना, चिंतन करना, तो मन सुमन बनता जाता है, बहुत श्रेष्ठ विचार करना सीख जाता है और हमारे कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन अगर इसी को हम छोड़ देते हैं इधर उधर की बातों में, कहीं पर चिंतन, कहीं पर दर्शन, कहीं व्यर्थ देखने सुनने में, तो वो बहुत भटकाता है, रुलाता है, चंचलता करता है। इसलिए बाबा हम सबको इस समय के अनुसार ध्यान खिंचवाते हैं। कम से कम आप सभी बाबा के मिलन के शुभ दिन पर आए हैं और कल मिलन मनाएंगे। सारे दिन का, अमृत वेले से रात तक का, ये समझना कल का दिन एक बहुत सुंदर अनुभूति का दिन है, प्रभु मिलन का दिन है, वरदान लेने का दिन है, भरपूर होने का दिन है। इस दिन कोई भी मन में व्यर्थ का, कोई भी प्रकार का ऐसा नेगेटिव संकल्प ना आए, प्रवेश ना होने पाए, वो द्वार बंद कर दें, तब उस आनंद का हम अनुभव ले सकेंगे, अपनी स्वराज्य स्थिति का आसन, सीट जो बाबा ने दी है, इस शरीर से डिटैच होकर के इस भ्रकुटी आसन पर बैठ जाना और एक लाइट के शरीर से बाबा के पास वतन में उड़ के जाना। अगर एक सारा दिन चलते फिरते अभ्यास कर लेंगे, थोड़ा सा बाह्य मुक्ता से हमको अलग होना पड़ेगा, क्योंकि जब ज्यादा लोग हो जाते हैं, संगठन होता है, एक बोलता है तो बोलने का रस आत्मा को इतना आ गया है, जो बोलते बोलते वायुमंडल ही आवाज का बन जाता है। लेकिन कम से कम कल एक दिन के लिए हम सब मौन रख सकते हैं, हो सकता है कि हम मन और मुख दोनों का, मन का भी, माताएं हाथ उठाओ, देखें, अच्छा, रख सकती हैं सभी कल के दिन, अमृत वेले से ही, अभी से ही रात को ही व्रत ले लेना। अभी हमारी वंदना बहन आएंगी, समाचार आपको बाबा के मिलन का प्रोग्राम बताएंगी थोड़ी देर के बाद, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि स्वराज्य स्थिति का चार्ट रखने से कौन कौन सी सत्ताएं आ जाती हैं हमारे जीवन के अंदर। दुनिया के अंदर चार सत्ताएं इस समय भी गाई हुई हैं। एक स्वराज्य अधिकारी आत्मा उन चारों सत्ताओं से इस समय संपन्न अनुभव करती है। अगर राज्य सत्ता है, स्वराज्य की सत्ता आत्मा का अपने आप पर शासन है, अपनी दृष्टि पर कंट्रोल है, अपने मुख पर कंट्रोल है, अपनी वाणी पर कंट्रोल है, अपने संकल्प की गति पर कंट्रोल है, अपनी एक एक इन स्थूल कर्मिंद्रियों पर कंट्रोल है, मुझे क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है और क्या करना है, जो बाबा ने हम सबको 5 महामंत्र दिए हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, लेकिन इसके साथ 2 और मंत्र जोड़ दिए, थिंक नो इविल और डू नो इविल। अगर हम सभी 5 ये मंत्र पक्का करके रखें कि मुझे कुछ भी ऐसा नहीं देखना है, और बाबा इविल इसी को कहता है देहभान में आकर के सोचना, देखना, बोलना इविल है, बुरा है, इसलिए कोई भी बुराई की चीज न मुझे देखनी है, न सुननी है, न सोचनी है, न बोलनी है, अपने आप देखेंगे बहुत सा समय हमारा व्यर्थ से बच जाएगा, और जब बच जाएगा तो मन अपने आप शांत होने लगेगा, मन का मौन हो जाएगा, अपने आप बाबा की तरफ वो दौड़ने लगेगा, भागेगा, जाएगा, खींच होगी बाबा की, और ऐसे लगेगा कि बाबा की सकास के नीचे मैं आत्मा चल रही हूँ, बाबा की करंट के अंदर हूँ और बाबा मुझे चला रहा है, बाबा मुझे देख रहा है, बाबा से मेरी बातें हो रही हैं। तो 4 सत्ताएं जो आती हैं, पहली राज्य सत्ता स्वराज्य की, एक एक कर्म इंद्रिय उसके आर्डर प्रमाण कार्य करती है। पहली सत्ता सबसे श्रेष्ठ सत्ता है, जो आत्मा राजा बन जाती है और कर्म इंद्रियां उसकी आर्डर मानने वाली कर्मचारी बन जाती हैं। दूसरी एक बड़ी सत्ता जो दुनिया के अंदर आज धर्म सत्ता के रूप में मानी जाती है, बहुत बड़ी सत्ता है, लेकिन भले उसके अंदर तमो प्रधानता आ गई, स्वार्थ भावनाएं आ गई और हदें आ गई, इस कारण से धर्म सत्ता विकृत हो गई है, विखंडित हो गई है, टकराव शुरू हो गए हैं धर्म के नाम पर, जितने फसाद जितने दंगे हुए हैं सब धर्म के नाम पर हुए हैं, क्योंकि इंसान हदों में बंध गया। हम सभी स्वराज्य अधिकारी आत्माओं के अंदर एक बहुत सुंदर धर्म सत्ता आ जाती है, हमें ये कोई नहीं कह सकता ये धर्म को नहीं मानते हैं। उन राज्य अधिकारियों के लिए कहा जाता धर्म निरपेक्ष है, और हम सभी धर्म आत्माएं हैं, क्योंकि धर्म माना धारणाएं। अगर हम राज्य सत्ता वाली आत्माएं हैं तो दिव्य गुणों की धारणाएं हमारे जीवन से स्पष्ट दिखाई देती हैं। एक एक गुण एक एक कर्मिंद्री से दिखाई देने लगता है। सबसे पहला गुण, ये दृष्टि एक पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, पवित्र दृष्टि से देखते और सुनते हैं, आत्मा को देखते हैं, ये बहुत बड़ी धर्म सत्ता की ताकत है। इसके लिए कुछ भी हो जाए, प्राण भी जाए, लेकिन ये वचन, ये धर्म खंडित नहीं हो सकता ब्राह्मण आत्माओं का। बाबा के बच्चे जितने भी बाबा के घर में आए हैं, मैं समझता हूँ हर एक ने बाबा के आगे पक्का दृढ़ता से संकल्प किया होगा कि हम बाबा आपके बच्चे संपूर्ण पवित्र बन करके रहेंगे, पवित्रता का धर्म अपनाएंगे, और इस पवित्रता के धर्म से हमारी जीवन धारणाओं से संपन्न बन जाएगी। तो हम सभी धर्म सत्ता वाली आत्माएं हैं। दूसरी सत्ता विज्ञान की सत्ता सबसे बड़ी है, और वो विज्ञान की सत्ता आज कितनी कमाल कर रही है हम सभी देख रहे हैं। साइंस की प्रगति, कंप्यूटर युग, और इतनी फास्ट गति की प्रगति, जो बाबा कहते 100 साल के अंदर माया का इतना विपाम्प हो गया है, जो इस कलयुग को ही सतयुग के रूप में बदल दिया, दिखावा कर दिया, कहां कहां साइंस के साधन पहुंच गए, बटन दबाते ही एयर कंडीशन ठंडी हवाएं आ जाती, बटन दबाते ही लोग सैर कर लेते देश विदेश का, कहां कहां पहुंच जाते हैं, रॉकेट से अंतरिक्ष तक भी पहुंच गए, साइंस की कमाल है। लेकिन हम सभी राज्य सत्ता वाली आत्माएं विज्ञान सत्ता से इतना संपन्न बनी है जो बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे तुम सब साइंस पर भी विजय प्राप्त करते हो साइलेंस के बल द्वारा। क्या हम सभी को यह अनुभव है कि जहां साइंस नहीं पहुंच सकती वहां हम सभी योगी आत्माएं एक सेकंड से भी कम समय में पहुंच सकती हैं। ये हमारी साइलेंस की विज्ञान की बहुत बड़ी सत्ता है, शक्ति है हर आत्मा के अंदर। बाबा बीच बीच में ये मुरली चलाते चलाते हम सबको ये ड्रिल कराते हैं। पिछली बार भी 4 ड्रिल कराई, चलो मन और बुद्धि को विराम देकर अपने मूल वतन परम धाम की सैर करो। एक सेकंड में ऐसे लगा कि 20,000 की सभा बाबा के साथ मूल वतन में बैठ गई, कोई हलचल नहीं, फुल साइलेंस थी। उसके बाद बाबा ने कहा अच्छा अभी सूक्ष्म वतन में आ जाओ, फिर साकार दुनिया में स्वर्ग की सैर करो, फिर अपने साकार वतन मधुबन में आ जाओ। बाबा हम सबको एक सेकंड से भी कम समय में, जो बाबा कहते मन एक राकेट से भी तीव्र गति का विमान है, राकेट से भी तेज गति है, यात्रा कराते हैं। ये विज्ञान की सबसे बड़ी सत्ता है हम सबके पास, और इसका प्रयोग करके हम सबको अनुभव करना चाहिए कि जो अनुभव करना चाहें, जब अनुभव करना चाहें, शीतलता का अनुभव करना चाहें तो सागर के तले में चले जाएं, अगर सकाश और ज्वाला स्वरूप का अनुभव करना चाहें तो ज्ञान सूर्य के नीचे बैठ जाएं। ये विज्ञान की बहुत बड़ी शक्ति है, इस ऊर्जा को हम सभी एकाग्र कर सकते हैं। वो लोग सूर्य की किरणों को एकाग्र करके सोलार एनर्जी के माध्यम से कितने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, इतना बड़ा भोजन का भंडारा चल रहा है, पानी गर्म हो रहा है, लाइट्स जल रही हैं सोलार एनर्जी के माध्यम से, लेकिन हम उस ज्ञान सूर्य बाबा की किरणों को स्वयं पर एकाग्र करके प्रकाश से, उस शक्तियों से, उन किरणों से अपने संस्कारों को बदल सकते, दूसरे के विचारों को चेंज कर सकते हैं। ये विज्ञान की शक्ति है, हर आत्मा तक पहुंच सकते हैं, उनको मदद दे सकते हैं, उनको समय पर साथ का अनुभव करा सकते हैं, है सबके पास। और इसी शक्ति को यहाँ पर जमा करना है। जितनी जितनी आत्मा की पवित्रता की स्टेज बढ़ती जाएगी और जितनी एकाग्रता की स्टेज बढ़ती जाएगी, तो कुछ एनर्जी को भी जब तक एकाग्र नहीं किया जाता, उस ऊर्जा को जब तक दर्पण पर एकाग्र नहीं किया जाता तब तक ऊर्जा कार्य नहीं करती, इसको भी एकाग्र करना पड़ेगा स्वच्छ दर्पण पर, मन रूपी दर्पण पर। तो इस विज्ञान सत्ता का हम सभी स्वराज्य अधिकारी बन करके एक अथॉरिटी स्वरूप बन जाएं कि हमारे पास ये बहुत बड़ी शक्ति बाबा ने दी है। तो सभी अपने चार्ट में चेक करना कि धर्म सत्ता और विज्ञान सत्ता से मैं आत्मा कहाँ तक संपन्न बनी हूँ, भरपूर बनी हूँ। और तीसरी सत्ता है श्रेष्ठ कर्म की सत्ता। श्रेष्ठ कर्म करना बाबा ने ही सिखलाया है। मनुष्य आत्माएं भले दान पुण्य करती हैं, समाज सेवाएं करती हैं, सोशल सेवाएं कर रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ स्वार्थ है। दान के पीछे भी स्वार्थ है, समाज सेवा के पीछे भी स्वार्थ है। कोई नाम चाहता है, कोई मान चाहता है, कोई शान चाहता है। संगम युग पर हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को बाबा ने श्रेष्ठ कर्म करने की कला सिखाई है। एक एक बाबा का बच्चा जो स्वराज्य अधिकारी है, जिसके पास पहली सत्ता है स्वराज्य की सत्ता, उसको श्रेष्ठ कर्म करने की कला आ जाती है। और बाबा इतने तक श्रेष्ठ कर्म हम सबको सिखला रहे हैं, बता रहे हैं कि कोई भी कर्म ऐसा न हो जो ये कर्म से किसी आत्मा को दुख की अनुभूति हो। इस बार तो इतना बाबा ने ध्यान खिंचवाया है कि बच्चे दुख नहीं देते हो तो अच्छी बात है, लेकिन दुख लेना भी नहीं, वो भी श्रेष्ठ कर्म में नहीं गिनती होगा। अगर तुम दुख ले लेते हो और दुखी होते रहते हो अंदर अंदर, तो भी ये श्रेष्ठ कर्म नहीं है। तो श्रेष्ठ कर्म कैसे किए जाएं, किस विधि से किए जाएं, हम सबको बाबा ने वो कर्म की कला सिखाई है। आती है सबको, क्योंकि सतयुगी दुनिया की रचना, जिस सतयुग की स्थापना के लिए हम सभी बाबा के बच्चे बने हैं, उसका आधार है श्रेष्ठ कर्म। और वो श्रेष्ठ कर्म केवल बाबा की याद में रहकर किए हुए कर्म ही हैं। अगर उन कर्मों में बाबा की याद नहीं है, या बाबा को हम अपने कर्म समर्पित नहीं करते, जो कुछ किया अगर कर्तापन का भान आ गया कि मैंने किया, मैं करता हूं, बहुत बड़ा बंधन क्रिएट कर लेते हैं। ये मेरी सेवाएं हैं, मेरी बुद्धि है, मेरी कमाल है, मैंने किया है, मेरा मान, मेरा नाम, मेरा शान, जहां पर भी ये बात आती है वहां श्रेष्ठ कर्म का खाता नील हो जाता है। बाबा ने बहुत अंडरलाइन इस बार कराया है कि कई बच्चों का खाता 5% भी नहीं है, क्योंकि करते बहुत कुछ है, भाग दौड़ बहुत करते हैं, बहुत सेंटर्स खोल देते, बहुत स्थापना का मदद करते, लेकिन मान शान नाम, कहीं न कहीं कामनाएं चाहनाएं उस खाते को नील कर देती है। इसलिए जो कुछ कर्म किए जाएं वो कर्म समर्पित किए जाएं। मैं नहीं करता, बाबा जो करा ले, मैंने किया ये मेरी बुद्धि है, बाबा कहता तुम्हारी बुद्धि नहीं इस समय काम करती, अगर कहते हो तो ये अपना अहंकार है, अभिमान है। तो बाबा हम सबको कितनी श्रेष्ठ कर्मों की एक कलम हाथ में दे रहे हैं, बच्चे तुमको जितनी लंबी भाग्य की रेखा खींचनी है खींच लो, एक जन्म की नहीं, पूरे 84 जन्म की गारंटी कर दूं, 21 जन्म की तो है ही, लेकिन ऐसी गारंटी बाबा अभी दे रहे हैं, यही एक संगम युग का श्रेष्ठ जन्म है, जिसमें आप बच्चे श्रेष्ठ कर्म करके, बाबा की याद में रहकर कर्म करके, जैसे बाबा ने कहा बच्चे, दादियों के साथ जब बाबा पिछले बार मिल रहे थे तो कहा कि एक बात बताऊं कि मन बहुत कमाल करता है, तो दादी तो बड़ी रूझान करती हैं, जानकी दादी ने बाबा को बोला, बाबा मन कौन सी कमाल करता है, तो बाबा ने मुस्कुरा करके क्या जवाब दिया होगा, बोला चंचलता बहुत करता है। तो दादी ने कहा ये कौन सी कमाल है, बोला आप लोगों का नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि आपने मन और बुद्धि को समर्पित किया हुआ है, समझती नहीं हुई मेरी बुद्धि है, मेरा मन है, समर्पित कर दिया है, बाबा जो करा रहा है, जो चला रहा है, इसलिए तुम्हारा मन चंचल नहीं है। लेकिन कई बच्चों का मन बहुत चंचल है, इसलिए विधि ये सिखा दी हम सभी को कि बाप और सेवा, याद और सेवा, इसमें हम सभी जो कुछ करते हैं वो बाबा को समर्पित करें। मेरी सेवा है, मैंने की है, मेरे सेंटर्स हैं, मेरे जिज्ञासु हैं, मेरा स्थान है। अब बाबा कहता बच्चे इन हदों को छोड़ो, इनसे ऊपर उठो और अपने आप को बेहद मिलाओ, ये बाबा का कार्य है, बाबा की सेवाएं हैं, कराने वाला करण करावन हार है, चला रहा है, हम सबको नचा रहा है। कई बार कहता है बच्चे तुम सभी कठपुतलियां हो, कठपुतली का डांस दिखाते हैं, यहाँ पर उदयपुर के पास एक बहुत सुंदर म्यूजियम बनाया है, कठपुतली का डांस दिखाते हैं, कठपुतलियां डांस करती हैं लेकिन कराने वाला पीछे होता है। तो हम सभी संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं सदा ये समझें कि स्वराज्य अधिकारी तो हैं, लेकिन स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की डोर बाबा के हाथ में है, जो कुछ बाबा को कराना है करा ले, मैं आत्मा निमित्त मात्र हूं। इसलिए इस बार बाबा ने एक बहुत सुंदर चार्ट बताया है कि बच्चे हर सेवा में चेक करो निमित्त भाव कहाँ तक रहता है, निर्माण भावना कहाँ तक है, मैं आत्मा निर्माण कहाँ तक बनी हूं, और निर्मल वाणी कहाँ तक है। अगर वाणी में भी जरा भी कुछ कटु वचन निकल जाते, जोर से भी आवाज निकल जाती, तो वो बहुत बड़ी डिससर्विस करती है। इसलिए ब्राह्मण आत्माएं, कभी कभी आप सभी ट्रेन्स में जाते हो, बाहर कारोबार में जाते हो, हमारे पास कई बार पत्र आते हैं। पिछली बार का एक पत्र आपको दो लाइन में सुनाता हूँ। कहेंगे कैसे दादी जी के पास बहुत सारी पोस्ट आती है, किसी ने रेलवे से ट्रेन के डिब्बे से ही पत्र लिखा। कहता भाई साहब आपके यहाँ से तो हजारों लोग एक साथ ट्रेन में चलते हैं, क्योंकि जिस दिन जाने का समय होता है बहुत भीड़ होती है डिब्बों में। बोला सबकी नींद फिटा देते हैं, जितने यात्री सोए होते हैं सब दुखी हो जाते हैं, इतनी आवाज करते हैं, इतना शोर मचाते हैं और कहते हैं हमको भगवान पढ़ाता है। अरे भगवान जिनको पढ़ाता है कितना शांत होना चाहिए, कितना उनका शुद्ध व्यवहार होना चाहिए, कैसी उनकी भाषा होनी चाहिए, ऐसा लगता है तो डब्बे में आकर के शोर हो गया, अशांति हो गई। तो दादी को पत्र लिखता है, कोई जानकार होगा आया होगा कभी कि दादी जी अपने भाई बहनों को बताओ कि आप सभी इतना भगवान से मिलके जा रहे हो, कम से कम जहां जाते हो अपनी छाप डालो, अपना प्रभाव डालो, ज्ञान सुनाने से लोगों के ऊपर असर नहीं होगा, आपके व्यवहार का असर होगा, उनको भी आराम से बिठाओ, खुद भी आराम से बैठो, ज्यादा हलचल में नहीं आओ। तो बाबा हम सबको ज्ञान के साथ साथ व्यवहार पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। तो हम कहते स्वराज्य अधिकारी का चार्ट क्या चेक करे, अगर मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं तो मेरे व्यवहार में कहां तक शुद्धता, पवित्रता, सबके प्रति शुभ भावना, रहम की भावना और कल्याण की भावना आई है, ये हम सभी चेक करें। कहीं लिखते हैं दो चार दिन, दस दिन, पंद्रह दिन, बहुत उमंग उत्साह से चार्ट लिखते हैं, बनाते हैं, टीचर्स बहने देती हैं, लेकिन कहते क्या करूं बहन जी, वही वही बात लिखता हूं, लगता है क्या लिखूं इसलिए छोड़ देता हूं। लेकिन अगर हमारी एक अंदर की लगन है, दिन प्रतिदिन हमारी प्रगति हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे कर्म में श्रेष्ठता आती जाती, व्यवहार में शुद्धता आती जाती है, तो लगता है कि मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी बनती जा रही हूं और मेरे आंतरिक अंदर की संस्कार, हमारा स्वभाव, हमारी पुरानी आदतें जो अधिक बोलने की हैं, डिस्टर्ब होने की हैं, डिस्टर्ब कर देने वाली हैं, घड़ी घड़ी फीलिंग में आने वाली हैं, फीलिंग दे लेने वाली हैं, दूसरों को दुखी कर देने वाली हैं, वो सब आदतें योग के प्रयोग से चेंज होती जा रही है। अगर हम योग कर रहे हैं और हमारी आदतें वही की वही चलती आ रही हैं, तो आप सभी विचार करना क्या वो योग यथार्थ है। अगर योग सही है, बाबा के साथ लिंक जुटी हुई है, तो बाबा की सब विशेषताएं हमारे अंदर प्रवेश होनी चाहिए। बाबा शांति का सागर है, बाबा प्यार का सागर है, बाबा सुख का सागर है, मैं आत्मा कम से कम उसका स्वरूप बन जाऊं, ये योग है। मैं योग ऐसे लगाता रहूं, योग ऐसे ही योग करता रहूं, मैं आत्मा हूं वो बाबा है, और मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे, मेरा व्यवहारिक जीवन जरा भी शुद्ध न हो, तो कौन मानेगा इस बात को, कितना भी ज्ञान सुना लिया जाए। इसलिए बहुत ध्यान देने, क्योंकि बाबा कई बार कहते हैं बच्चे जब तुम बैज लगाते हो, सफेद ड्रेस पहनते हो, तो सभी इसी नजर से देखते हैं क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे पहनते हैं, इनकी आदतें क्या हैं, क्या करते हैं। एक एक काप के ऊपर टीचर बन करके पहरा देता है। इसलिए अगर हम सभी इतना ध्यान रख करके चलते हैं, तो बाबा कहता है बच्चे प्रत्यक्ष कैसे होऊंगा मैं, तुम्हारे चलन और चेहरे से मैं प्रत्यक्ष हो जाऊंगा। तो हम सभी बाबा के बच्चे ऐसे स्वराज्य अधिकारी बन जाएं, इतना हमारा अपने आप पर शासन हो जाए, जो हम हर कर्म करते हुए बाबा की याद में रहें और कर्म की श्रेष्ठ सत्ता का अनुभव करें। संगम युग पर कर्म की श्रेष्ठ सत्ता जिसके पास है, उसका बहुत श्रेष्ठ और ऊंचे से ऊंचा भाग्य अनेक जन्मों का अपने आप बन रहा है। बाबा से नहीं कहना बाबा मेरा भाग्य बनाओ, बाबा तो आया ही है भाग्य बनाने के लिए, लेकिन बाबा हम बच्चों को कहता है बच्चे भाग्य बनाने की कलम मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ, तुम बनाओ ना, अपने आप खींच लो जितनी चाहिए, लेकिन श्रेष्ठ कर्म और वो भी मेरी याद में किए हुए कर्म, मुझे समर्पित करके किए हुए कर्म। तो हम सभी बाबा के बच्चे कल का दिन सुनना, कल के दिन के लिए क्या डायरेक्शंस हैं, लेकिन एक दिन की मौन की तपस्या करें, भले 15,000 का ग्रुप है कोई बात नहीं, लेकिन 15,000 15 लोगों में बदल जाएं, यही वतन सूक्ष्म वतन हो जाए, ऐसे लगे जैसे सचमुच सवेरे से ही हम प्रभु मिलन का आनंद ले रहे हैं और स्वराज्य अधिकारी बन करके चल रहे हैं। क्योंकि बाबा कोई देहधारियों से मिलने नहीं आता। अगर कोई देहाभिमान के अंदर है, बॉडी कॉन्शियस में है, तो बाबा आके चला भी जाएगा और कहेगा पता नहीं बाबा कहाँ आया, कैसे आया, कब आया। बाबा का स्वरूप तो दिखता ही नहीं है, बाबा तो प्रवेश करते हैं, आत्मा प्रवेश करती है और बहुत शुद्ध स्वरूप में, पवित्र स्वरूप में प्रवेश करती है। इसलिए बाबा के मिलन का रस आनंद लेने के लिए हम सबको फुल सोल कॉन्शियस स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रहना है। तो हम इस आसन पर रहें, एक दूसरे को देखें, मुस्कुराएं अवश्य, सूखा चेहरा नहीं, लेकिन मुस्कुराते हुए उनकी भ्रकुटी आसन को देखें। हो सकता है ऐसा? और बाबा के अनुभव का, मिलन का पूरा आनंद लेना। ओम शांति।